हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ऋषभ का अपार्टमेंट। ऋषभ ने मोबाइल फोन उठाया और स्क्रीन पर जो नंबर था उसे फिलहाल इस नंबर से शायद कॉल आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ सोचकर वो कॉल रिसीव कर लिया। जैसे ही ऋषभ ने वो कॉल रिसीव की, तुरंत ही उसके कानों में आवाज पड़ी, हैप्पी होली, और कहाँ हो आप? कम से कम फेस्टिवल के दिन तो कॉल या मैसेज करके विश कर दिया करो, वैसे भी कभी आपको याद तो नहीं आती किसी की भी। ऋषभ ने मोबाइल फोन कान से लगाकर वहीं बैठकर किनारे पर बैठते हुए जवाब दिया, कौन सा फेस्टिवल? मुझे किसी भी फेस्टिवल, फंक्शन, पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है। हाँ हाँ पता है, आपको तो किसी भी चीज से मतलब नहीं होता, इसलिए तो मैंने खुद ही कॉल कर लिया, बस ये कन्फर्म नहीं था कॉल रिसीव होगी या नहीं। इतना बोलते हुए दूसरी तरफ से वो लड़की हंसने लगी, और उसकी बातें सुनकर ऋषभ भी हल्का सा मुस्कुराया और उसने पूछा, अच्छा ठीक है, तू बता कैसी है हर्षिता? दूसरी तरफ से हर्षिता ने गहरी सांस लेकर आराम से अपने काउच पर लेटते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ ऋषभ भाई, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं इस वक्त, तो उन सब पर ही काम चल रहा है, लेकिन अभी होली की छुट्टी मिली तो दो दिन रिलैक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई थी, सुबह बस अभी घर वापस आई हूँ। ऋषभ भी उसके अचीवमेंट याद दिलाते हुए बोला, हाँ हाँ मिस इंडिया बन गई है अब तो, काम तो खुद ही चल कर आएगा क्योंकि इतनी फेमस जो हो गई हो। हर्षिता को ऐसा लगा जैसे कि वो उसे ताना मार रहा हो, इसलिए वो तुरंत ही उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, क्या भाई फेम की बात आप कर रहे हो, आप तो खुद इस वक्त टॉप सेलिब्रिटीज में से हो और सबसे ज्यादा फेमस, आपके आगे तो मैं कहीं भी नहीं ठहरती। फिर भी इस बार ऋषभ ने अपने चेहरे पर बहुत ही ज्यादा जेन्युइन स्माइल के साथ बोला, अरे नहीं ऐसा नहीं है, तो भी तो टॉप पर है और ये चीज वैसे भी ज्यादा दिन नहीं रहती, तो इन्हें दिमाग पर चढ़ने नहीं देना चाहिए। हर्षिता भी उसकी बात पर अग्री करते हुए बोली, यस सेम गोज फॉर मी ऑल्सो, मैं भी हमेशा ध्यान रखती हूँ, मुझे पता है ये सब कुछ टेम्प्रेरी है, लेकिन फिर भी जितने दिन सब कुछ हमारी साइड है कम से कम इतने दिन ही अच्छे से काम करना चाहिए, जिससे कि बाद में भी लोग हमें याद रखें। ऋषभ ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ ये सही कहा तुमने, बस एक घर वापस जाने का इरादा नहीं है क्या? होली पर अगर दो दिन की छुट्टी थी तो घर ही चली जाती। दूसरी तरफ से हर्षिता की आवाज़ में मायूसी एकदम साफ सुनाई दे रही थी, मुझे बोल रहे हो आप? मेरा घर तो फिर भी दूसरे सिटी में है, और वैसे भी कौन सा वहाँ कोई आरती की थाल लेकर मेरा वेलकम करने के लिए खड़ा होगा, आप ही घर चले जाते, घर ना सही कम से कम शिविका दीदी और काव्या से ही मिलने। ऋषभ एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, शिविका दी और काव्या, हाँ बहुत याद आती है मुझे उन दोनों की, रोज़ ही, लेकिन पता नहीं दी अब तक मुझसे नाराज़ हो तो मैं क्या ही कहूँगा, वैसे भी इतना तो डिसअपॉइंट किया है मैंने सबको, बस इसीलिए अभी सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। उसके इस तरह से बोलने पर हर्षिता को समझ आ गया कि उसकी तरह ही वो भी इस टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और इसीलिए अभी वो ऐसे इतना उदास साउंड कर रहा है, तो हर्षिता ने उसे थोड़ा चीयर अप करने के लिए उसकी तारीफ में कहा, अरे नहीं भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, कोई भी डिसअपॉइंटेड नहीं है, उल्टा सब बहुत प्राउड है आप पर, शिविदी भी प्राउड होगी, करण जीजू और मम्मा जी भी, अगर वो होश में होते तो, वो मेरे कहने का मतलब है कि अभी वो हॉस्पिटल में ही है ना, मैं काफ़ी टाइम से जा नहीं पाई मिलने, एक्चुअली मीडिया हर जगह पीछे लग जाती है और इस तरह से अगर हॉस्पिटल जाऊंगी तो अगले दिन न्यूज़। हर्षिता की बातों में गिल्ट साफ नज़र आ रहा था, इसीलिए ऋषभ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी पापा कोमा में हैं और अभी पिछले हफ्ते ही मैं वहाँ से होकर आया और करण जीजू से भी मिला था मैं वहाँ पर। करण के बारे में सुनते ही हर्षिता काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर ऋषभ से पूछने लगी, सच में बात हुई क्या आपसे उनकी? आपने उनसे पूछा उन्होंने ये सब क्यों किया? क्योंकि हम लोगों को पता है वो दी को धोखा नहीं दे सकते, वो उन्हें कितना प्यार करते हैं। हर्षिता की ये बातें सुनते ही ऋषभ को भी जैसे मौका मिल गया करण की तरफ से सफाई देने का, इसीलिए एकदम से एक्साइटमेंट में बोला, हाँ वो बात हुई थी, मेरा मतलब है नहीं मौका नहीं मिला, हॉस्पिटल में कहाँ कोई बात करने का टाइम ही होता है। फिर बाद में कुछ सोचते हुए उसने अपनी बात बदल दी, क्योंकि उसे नहीं पता था करण ने जो कुछ भी उसे बताया है वो उसे किसी और को बताना भी है या नहीं, बस इसी कन्फ्यूजन में वो चुप हो गया। ऋषभ के इस तरह से बात बदलने पर हर्षिता ने भी फिर इस बारे में और नहीं पूछा और उसके काम के बारे में पूछते हुए बोली, हाँ मैं समझ सकती हूँ, बट आप बताओ न्यू एल्बम कब रिलीज़ हो रही है? आपके फ़ैन को तो कितना बेसब्री से इंतज़ार रहता है आपके सारे गानों का। ऋषभ ने भी उसे बताया, हाँ बस नेक्स्ट मंथ ही आने वाली है न्यू एल्बम, अभी उसे पर ही वर्क कर रहा हूँ। कुछ देर और हर्षिता ऋषभ ने बात की, क्योंकि आज काफी दिन के बाद ही वो दोनों इस तरह से कॉल पर बात कर रहे हैं। नहीं तो ऋषभ जल्दी किसी का भी फोन रिसीव नहीं करता है, और जब वो अपने काम में बिजी होता है तब तो उसका फोन भी साइलेंट पर ही रहता है। हर्षिता और सबके रिलेशन भी अब पहले से ही काफी ज्यादा ठीक हो गए हैं, और कजिन भाई बहन होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऋषभ ने जब घर में सबको अपनी सेक्सुअलिटी बताई थी तब हर्षिता ने उसे सपोर्ट किया था, और ऋषभ ने भी उसकी जर्नी में उसे काफी हेल्प की है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के स्ट्रगल समझ पा रहे थे, और ऋषभ को लगा ही था उसकी फैमिली में कोई भी इस बात को नहीं समझेगा। वहीं दूसरी तरफ हर्षिता के परिवार वाले भी उसके मॉडलिंग करियर के पूरी तरह से खिलाफ हो गए, इसीलिए वो आज तक अपने घर वापस नहीं गई है। ऋषभ की कभी कभी शिविका से फोन पर बात होती है, और अभी जब हर्षिता ने कॉल पर उसे इस बारे में याद दिलाया तो उसका भी मन होने लगा कि वो होली के बहाने से ही सही शिविका को फोन कर ले। इसी बहाने काफी दिनों से जो उसने अपनी बहन की आवाज तक नहीं सुनी है उसकी बात हो जाएगी। इसीलिए हर्षिता से कॉल पर बात खत्म करके जब ऋषभ ने कॉल डिस्कनेक्ट की, उसके थोड़ी देर बाद तक वो इस बारे में ही सोचता रहा, और फिर आखिरकार कुछ सोचते हुए उसने शिविका का नंबर डायल कर ही दिया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं। काफी बार उसने नंबर डायल किया लेकिन दूसरी तरफ से कॉल रिसीव ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ से शिविका की कॉल ना रिसीव करने पर ऋषभ काफी ज्यादा मायूस हो गया, लेकिन फिर भी चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट के साथ धीमी आवाज में बोला, आई होप आपकी लाइफ रंगों से भरी हुई होगी और होली भी अच्छी गई हो, या मेरी तरह अकेले तो नहीं होंगे आप, इतना तो पता है, लेकिन फिर भी एक बार कॉल रिसीव कर लेती, इतना भी क्या नाराज की अपने भाई से। ऋषभ को लगा शिविका से नाराज है इसलिए ही कॉल रिसीव नहीं कर रही, क्योंकि सच कहता उसे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि शिविका रुद्र के घर में जो उसका रूम है वहां पर ही अपना मोबाइल फोन भूल गई है, और अभी फिलहाल वो करण के साथ ही काव्या को ढूंढती हुई। इस बारे में ऋषभ को कोई भी आइडिया नहीं था, इसीलिए कुछ देर बाद उसने अपना भी मोबाइल फोन साइड में रख दिया और अपने घर में बने हुए स्टूडियो रूम में ही चला गया। टू बी कंटिन्यूड।
क्या लगता है आप लोगों को, ऋषभ को पता चलेगा काव्या के किडनैप होने के बारे में, और क्या वो इसमें कोई मदद कर पाएगा, और रुद्र और शिविका क्या ढूंढ पाएंगे काव्या को, कहां तक पहुंचे हैं वो दोनों, पता चलेगा अगले एपिसोड में। जब तक इसको पढ़कर कमेंट करिए, सिर्फ तीसरा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो फिर से हम एक एपिसोड ही देंगे डेली।